पहला अध्याय विषय प्रवेश। पहला, भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया तथा सुदूर पूर्व चीन, जापान और कोरिया के समान दक्षिण पूर्वी एशिया भी भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। भारत के पूर्व में बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, सियाम, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और फिलीपींस के राज्य हैं, जिन सब में न केवल भारत के धर्म प्रचारक ही शैव, वैष्णव, बौद्ध आदि धर्मों का प्रचार करने के लिए गए थे, अपितु कितने ही उपनिवेश भी वहां भारतीयों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध तो बहुत प्राचीन समय से था, पर जब राजा अशोक ने धर्म द्वारा अन्य देशों को विजय करने की नीति को अपनाया और आचार्य उपगुप्त मोद गलीपुत्र शिष्य के नेतृत्व में बौद्धों की तृतीय महासभा ने देशों में प्रचारक मंडल भेजने का आयोजन किया, तो भारत से पूर्व की ओर के इन प्रदेशों में भी बौद्ध स्थविर और भिक्षु धर्म प्रचार के लिए गए थे। तीसरी सदी ईस्वी पूर्व तक इन देशों में किसी उन्नत सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। भारत के धर्म प्रचारकों ने जहाँ इन देशों में अपने धर्मों का प्रचार किया, वहां साथी सभ्यता के मार्ग पर भी उन्होंने अग्रसर किया। बौद्धों के अतिरिक्त शैव, वैष्णव आदि पौराणिक धर्मों के प्रचारक भी इन देशों में गए और वहां के निवासियों को उन्होंने अपने धर्मों का अनुयायी बताया। पर भारतीय लोग केवल धर्म प्रचार के प्रयोजन से ही इस क्षेत्र के देशों में नहीं गए थे, वहां उन्होंने अपने बहुत से उपनिवेश भी बसाए थे। बर्मा से लगाकर सुदूर चीन तक, हिंद महासागर तक, प्रशांत महासागर में जो बहुत से छोटे बड़े द्वीप और प्रायद्वीप हैं, मौर्योत्तर युग में वे सब भारतीय बस्तियों से परिपूर्ण हो गए थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध देशों में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना की यह प्रक्रिया शुंग सातवाहन युग में प्रारंभ हुई थी और गुप्त साम्राज्य के समय तक इसका चरम विकास हो गया था। प्रायः 13वीं सदी तक इस क्षेत्र के ये भारतीय राज्य कायम रहे। इनके राजा भारतीय थे और इनकी भाषा, संस्कृति, शासन विधि तथा धर्म आदि सब भारतीय थे। भारत के जिन प्रदेशों से जाकर लोग वहां बसते थे, अपने नए नगरों व बस्तियों के नाम वे मातृभूमि के अपने पुराने नगरों व जनपदों के नाम पर ही रखा करते थे। बंग देश से गए लोगों ने सुमात्रा के दक्षिण पूर्वी सिरे पर नए बंग की स्थापना की, जो अब बंका कहलाता है। इसी प्रकार आधुनिक का की स्थल ग्रीवा में नए तक्षशिला का निर्माण किया गया। यवद्वीप जावा में बसकर भारतीयों ने वहां की सबसे बड़ी नदी को सरयू नाम दिया और अधिक पूर्व में जाकर नई चंपा नगरी की स्थापना की। अंग जनपद की राजधानी का नाम चंपा रखा। वहां से भारतीयों ने उसी के नाम पर अपने नए उपनिवेश का नाम चंपा रखा। धीरे धीरे चंपा की शक्ति बहुत बढ़ गई। समीपवर्ती प्रदेशों को जीतकर चंपा ने एक साम्राज्य का निर्माण किया, जिसके विविध प्रांतों के नाम कौठार, पांडुरंग, अमरावती, विजय आदि थे। चंपा के राजाओं के नाम नरवाहन, विक्रांत वर्मा, इंद्र वर्मा आदि थे और उनके राज में पौराणिक हिंदू धर्म का प्रचार था। ये राजा शासन कार्य के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और इनके द्वारा उत्कीर्ण कराए हुए कितने ही शिलालेख इस समय विद्यमान हैं। चंपा के पश्चिम में एक अन्य भारतीय उपनिवेश था, जिसमें वर्तमान समय के कंबोडिया और सियाम के प्रदेश अंतर्गत हैं। चीनी लोगों ने इसे फुनान नाम से लिखा है और इस उपनिवेश की स्थापना कौंडिन्य नाम के एक ब्राह्मण ने की थी। आगे चलकर इस राज्य कंबुज ने भी बहुत उन्नति की। इसके राजा भी भारतीय थे और इसमें भी भारतीय धर्मों का प्रचार था। इंडोनेशिया के सुमात्रा, जावा आदि सभी द्वीपों में प्राचीन समय में भारतीयों के उपनिवेश स्थापित थे। यही दशा मलाया और बर्मा की भी थी। दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रायः सभी प्रदेशों में हिंदू मंदिरों, मठों, बौद्ध विहारों, चैत्य और स्तूपों के अवशेष बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भारतीय भाषाओं के शिलालेख भी इन प्रदेशों में बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में न केवल भारतीय राजाओं के ही शिलालेख प्राप्त हुए हैं, अपितु भारतीय व्यापारियों द्वारा उत्कीर्ण कराए हुए लेख भी वहाँ से मिलते हैं, क्योंकि भारत के साहसी व्यापारी प्राचीन काल से बड़ी संख्या में इन देशों में व्यापार के लिए जाया करते थे। धर्म प्रचार के उद्देश्य से इन देशों में जाने का सूत्रपात बौद्ध द्वारा किया गया था, पर उनका अनुकरण बहुत से शैव तथा वैष्णव प्रचारक भी इन देशों में गए और वहाँ के निवासियों को उन्होंने अपने धर्मों का अनुयायी बनाया। यही कारण है जो शैव और वैष्णव मंदिर भी इन देशों में बड़ी अच्छी संख्या में निर्मित हुए हैं और उनके अवशेष वर्तमान समय में भी विद्यमान है। भारतीय धर्मों तथा संस्कृति का प्रभाव इन देशों से अब तक भी नष्ट नहीं हुआ है। सियाम, बर्मा और कंबोडिया आदि देशों के लोगों का धर्म अब भी बौद्ध है और वे भारत को अपनी धर्मभूमि मानते हैं। मलाइसिया और इंडोनेशिया के लोग अब धर्म से मुसलमान हैं, पर उनकी भाषा, रहन सहन, कथा, परंपरा, संस्कृति आदि पर भारत की बहुत गहरी छाप है। वस्तुतः दक्षिण पूर्वी एशिया के इन देशों का विकास भारत के उपनिवेशों के रूप में ही हुआ था और एक सहस्त्र वर्ष से भी अधिक समय तक ये उसी ढंग से भारत के अंग रहे, जैसे गांधार, कपिश और कॉम्बोज थे। इसीलिए अनेक लेखक इस क्षेत्र के देशों को बृहत्तर भारत संज्ञा से सूचित करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि भाषा, धर्म, सभ्यता, संस्कृति, राजवंश और कला आदि की दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया के इन देशों को भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य के अंतर्गत मानना सर्वथा युक्तियुक्त है। दूसरा, स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप। प्राचीन भारतीय दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक देशों से परिचित थे और भारत के व्यापारी इन देशों में व्यापार करने के लिए जाया आया करते थे। वे इन्हें स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप कहा करते थे, क्योंकि इनके साथ व्यापार में उन्हें बहुत अधिक लाभ होता था और इनकी खानों से वे सोना प्राप्त भी किया करते थे। संभवतः बर्मा से मलाया तक का प्रदेश स्वर्ण भूमि कहलाता था और उससे पूर्व में स्थित इंडो चाइना का प्रायद्वीप, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तथा वर्तमान इंडोनेशिया के अंतर्गत विविध द्वीप सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो आदि स्वर्णद्वीप नाम से जाने जाते थे। बर्मा में इरावदी और उसकी सहायक नदियों की रेत से अब तक भी सोना निकाला जाता है और मलाया में भी सोने की खाने विद्यमान है। अतः प्राचीन भारतीयों द्वारा इस प्रदेश को स्वर्ण भूमि कहा जाना उचित ही था। इंडोनेशिया के विविध द्वीपों में बहुमूल्य धातुओं के अतिरिक्त गरम मसाले, चीनी, कीमती काष्ठ आदि प्रभुत परिमाण में होते थे और इनके क्रय विक्रय से प्रभुत धन कमाया जा सकता था। इस दृष्टि से इनका स्वर्ण द्वीप नाम भी संगत था। प्राचीन रोमन लोग भी इन्हें चिसी कहा करते थे, जिसका शब्दार्थ भी स्वर्णद्वीप है। पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप शब्दों का प्रयोग स्थूल रूप से किया गया है और इनसे वे विविध प्रदेश अभिप्रेत थे जो भारत के पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध देशों के साथ भारत का संबंध पहले व्यापार द्वारा ही हुआ था, अतः स्वर्ण भूमि तथा स्वर्णद्वीप का उल्लेख सबसे पूर्व व्यापार के सिलसिले में ही आया है। बौद्ध साहित्य में जातक कथाओं का विशिष्ट स्थान है। बुद्ध के पूर्व जन्मों को निमित्त बनाकर उनमें बहुत सी ऐसी कथाएं दी गई हैं जो प्राचीन इतिहास पर भी प्रकाश डालती है। इन जातक कथाओं में व्यापार के लिए स्वर्ण भूमि व स्वर्णद्वीप जाने वाले साहसी व्यापारियों के कथानक भी विद्यमान है। जातक कथाओं का संबंध भारतीय इतिहास के बौद्ध युग से है और उन द्वारा उसी युग की दशा पर प्रकाश पड़ता है। महाजनक जातक कावेल 6:22 के अनुसार मिथिला के राजकुमार महाजनक ने धन कमाने के उद्देश्य से एक ऐसे जहाज द्वारा स्वर्ण भूमि की यात्रा की थी जिस पर 7 सार्थवाह अपने पन्ने के साथ व्यापार के लिए जा रहे थे। सुसोंदी जातक कावेल 3:124 में सग नामक व्यापारी की समुद्र यात्रा का वर्णन है। उसने भरु कच्छ, भृगु कच्छ या भड़ौच से जहाज द्वारा यात्रा प्रारंभ की थी और वह स्वर्ण भूमि गया था। सुपारक जातक कावेल 4:56 में भी भरुकच्छ से स्वर्ण भूमि जाने वाले एक व्यापारी जहाज का उल्लेख है। एक जातक में वाराणसी के समीप के एक वर्धकी ग्राम की कथा दी गई है जिसके 1000 बढ़ई परिवारों ने जंगल काटकर लकड़ी से बड़े बड़े जहाज बनाए और अपने परिवार सहित उनमें बैठकर गंगा के रास्ते वे समुद्र में पहुंच गए और वहां से जलमार्ग द्वारा एक ऐसे द्वीप में जहां की विविध प्रकार के फल फूल प्रचुर परिमाण में उत्पन्न होते थे। स्वर्ण भूमि के आकर्षण से ही इन वर्धकी परिवारों का अपने विजन का परित्याग किया था। व्यापार के लिए स्वर्ण भूमि जाने वाले व्यापारियों की कुछ कथाएं कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी और बृहत कथा श्लोक संग्रह में भी की गई है तथा इसमें ही पाई जाती है। ये तीनों कृत गुणाढ्य कृत पाली भाषा की बृहत कथा नामक पुस्तक पर आधारित है। गुणाढ्य की मूल पुस्तक वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। बृहत कथा श्लोक संग्रह में सानुदास नामक एक व्यापारी की कथा दी गई है। आचेर नाम का एक साहसी व्यक्ति बहुत से साथियों को लेकर स्वर्ण भूमि के लिए प्रस्थान कर रहा था। सानुदास भी उसके साथ ही हो लिया। पहले वे जहाज द्वारा जल मार्ग से गए और समुद्र को पार कर वे ऐसी भूमि पर पहुंच गए जहां से आगे बढ़ने के लिए उन्हें दुर्गम पर्वत को पार करना था। वेत्र पत्र लताओं और वृक्षों की लटकती हुई जड़ों को पकड़ पकड़ कर से वे पहाड़ की चोटियों पर चढ़े। उससे आगे चलने पर उन्हें एक नदी मिली जिसे उन्होंने वंश पत बांसों से बनाए हुए बेड़े या पुल द्वारा पार किया। नदी के पार उतर कर उन्हें 2 पहाड़ियों के बीच की बहुत ही तंग तथा ढलान वाली पगडंडी से आगे बढ़ना था। इसके लिए उन्होंने बकरियों का प्रयोग किया जिनके द्वारा ही ऐसे रास्ते को पार किया जा सकता था क्योंकि बकरियां तंग पहाड़ी रास्तों पर सुगमता से आ जा सकती हैं। इस प्रकार आचेर की यह मंडली जब अजापस से जा रही थी दूसरी ओर से आती हुई एक अन्य मंडली से उनका सामना हुआ। दोनों का एक साथ अजापस से आ जा सकना असंभव था अतः आचेर की आज्ञा से दूसरी ओर से आने वाली मंडली के लोगों पर हमला कर दिया गया और उन्होंने उनको धक्का देकर खड्ड में फेंक दिया। अन्य भी अनेक बाधाओं का सामना आचेर व सानुदास की साथियों को करना पड़ा पर स्वर्ण का आकर्षण इतना बड़ा था कि उन्होंने यात्रा की कठिनाइयों की जरा भी परवाह नहीं की। अंत में वे एक ऐसी नदी के तट पर पहुंच गए जिसकी रेत में स्वर्ण के कणों की सत्ता थी। स्वर्ण भूमि तक पहुंचने के लिए प्राचीन भारत के व्यापारियों को कैसे कैसे मार्गों से जाना पड़ता था और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था बृहत कथा श्लोक संग्रह की इस कथा से उसका कुछ आभास मिल जाता है। कथा सरित सागर की अनेक कथाओं में जल मार्ग द्वारा स्वर्ण द्वीप जाने वाले व्यापारियों का वृतांत दिया गया है। एक कथा के अनुसार समुद्र सूर नाम के व्यापारी ने जहाज से स्वर्ण द्वीप के लिए प्रस्थान किया था और वह कलशपुर के बंदरगाह पर गया था। कथा सरित सागर तरंग 54:67 से रुद्र नाम का एक व्यापारी जब स्वर्ण द्वीप से वापस आ रहा था तो उसका जहाज मार्ग में समुद्र में डूब गया था। तरंग 54:86 से व्यापार के लिए स्वर्णद्वीप जाने वाले ईश्वर वर्मा और यशः केतु नामक व्यापारियों की कथाएं भी सरित सागर में विद्यमान है। तरंग 57:86 एक अन्य कथा के अनुसार कठाह द्वीप की राजकुमारी का जहाज भारत की ओर आते हुए मार्ग में स्वर्णद्वीप के पास नष्ट हो गया था और राजकुमारी ने उन द्वीप में शरण प्राप्त की थी। तरंग 123 कटाह द्वीप को वर्तमान समय की केड्डा या केडाह कडार के साथ मिलाया गया है। कथा सरित सागर की अन्य भी कई कथाओं में कटाह द्वीप जाने वाले व्यापारियों का वर्णन है। गुहसेन नाम का व्यापारी अपनी पत्नी देवस्मिता के साथ ताम्रलिप से कटाह द्वीप गया था। कथा कोश में नागदत्त नामक एक व्यापारी की कथा दी गई है, जो धन उपार्जन करने के लिए 500 जहाजों को लेकर समुद्र यात्रा के लिए चला गया था। मार्ग में उसने जहाज को एक ऐसे स्थान पर उसका जहाज फंस गया जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। नागदत्त ने अपनी विपत्ति की सूचना एक तोते के पैर में बांधे हुए पत्र द्वारा बाहर भेजी। यह पत्र स्वर्णद्वीप के राजा सुंदर के हाथों लग गया और उसने नागदत्त का संकट से उद्धार किया। हरिभद्र सूरि ने अपनी कथा ग्रंथ समाराइच कहा समारादित्य कथा में भारतीय व्यापारियों द्वारा की जाने वाली समुद्री यात्राओं के अनेक विवरण लिखे हैं। एक कथा के अनुसार धन नाम का एक सार्थवाह पुत्र धन कमाने के उद्देश्य से सुसम नामक नगर से चला और 2 महीने के बाद वह ताम्रलिप पहुंचा। वहां उसने अपना सब पर्णय बेच दिया, पर उसे पर्याप्त मुनाफा नहीं हुआ, अतः ताम्रलिप से उसने परतिरभांड विदशा जाने वाला माल खरीदा और एक जहाज का प्रबंध कर उस पर वह सब माल लाद दिया। समुद्र यात्रा शुरू करने से पहले सार्थवा पुत्र धन ने तीनों और अनाथों को धन बांटा, जल निधि समुद्र की पूजा की और फिर यान पात्र जहाज की पूजा की करके वह जहाज पर सवार हो गया। लंगर उठा लिए गए और पाल खोल दिए गए। समुद्र पाताल के समान गहरा था, उछलती कूदती हुई लहरें जल हस्तियों जैसे जान पड़ती थी। पढ़ने को बेचने के लिए सार्थवा पुत्र धन का जहाज कटाह द्वीप पहुंचा और धन का नंदक नामक सेवक भेंट उपहार का सामान लेकर वहां के राजा के पास गया। राजा ने उसका सम्मान किया और उसके निवास के लिए स्थान दिया। ताम्रलिप्त से लाया हुआ सब भांड कटाह द्वीप में भेज दिया गया और वहां से प्रति भांड लेकर वापसी यात्रा प्रारंभ की गई। केवल कथा ग्रंथों में ही नहीं अपितु प्राचीन भारतीय साहित्य में अन्यत्र भी स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप के उल्लेख विद्यमान है। कौटिल्य अर्थशास्त्र 2.11 में स्वर्ण भूमि से प्राप्त होने वाली अगुरु का उल्लेख है। मिलंद पन्हों पृष्ठ 356 में एक स्थान पर जहाज के एक ऐसे स्वामी का विवरण है जो व्यापार के लिए समुद्र को पार कर तकोला या चीन या स्वर्ण भूमि या अन्यत्र बंदरगाहों पर जाया करता था। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध पाली ग्रंथ निर्देश में उन क्लेशों का वर्णन किया गया है। धन और सुख की अभिलाषा से समुद्र यात्रा करने वाले नाविकों को जिनका बहुधा सामना करना पड़ता था। इस प्रसंग में वहां लिखा है कि नाविक लोग इन स्थानों पर जहाजों द्वारा जाया करते हैं। पहला गुम्ब, दूसरा तक्कोल, तीसरा तकसीला, चौथा कालमुख, पांचवा मौड़नपार, छठा वेसुंग, सातवां वेरापत, आठवां जावा, नौवां तमली, दसवां बंग, ग्यारहवां इलबद्दन, बारहवां स्वर्णकुट, तेरहवां स्वर्णभूमि, चौदहवां तंबपन्नी, पंद्रहवां सुपार, सोलहवां भरुकच, सत्रहवां सुरट, अठारहवां अंगनेक, उन्नीसवां गणगण, बीसवां परम गंगन, इक्कीसवां यौन, बाईसवां परम यौन, तेईसवां अल्लसंद, चौबीसवां मरुकंतार, पच्चीसवां जनुपथ, छब्बीसवां अजपथ, सत्ताईसवां मेंढपथ, अट्ठाईसवां शंकुपथ, उनतीसवां छतपथ, तीसवां वंशपथ, इकतीसवां शकुणपथ, बत्तीसवां मुसिकपथ, तैतीसवां दरीपथ और चौंतीसवां वेताधार। इनमें अनेक स्थान ऐसे हैं जिनकी भौगोलिक स्थिति को जान सकना संभव नहीं है। अल्लसंद, अलेक्जेंड्रिया, योन, यवन या ग्रीक देश आदि सुदूर पश्चिम में स्थित थे और भरुकच्छी तथा सुपार सोपारा पश्चिमी भारत में स्वर्ण भूमि की स्थिति दक्षिण पूर्वी एशिया में थी। इसी प्रकार तक्कोल, जावा, स्वर्णकुट और बंग बंका आदि भी भारत के दक्षिण पूर्व में ही थे। धन कमाने के प्रयोजन से समुद्र मार्ग द्वारा इन विविध स्थानों की यात्रा करते हुए जो अनेकविध कष्ट नाविकों को उठाने पड़ते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हुए निर्देश में इन स्थानों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ महाकर्म विभंग में देशांतर विपाक विदेश यात्रा से प्राप्त होने वाले कष्ट की व्याख्या करते हुए उन व्यापारियों का जिक्र किया गया है जो महाकौशल और ताम्रलिप्त में स्वर्ण भूमि जाया करते थे। अशोक के समय में आचार्य उपगुप्त मोदकली पुत्र तिष्य द्वारा विविध देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो महान आयोजन किया गया था, महावंश के अनुसार उसमें स्वर्ण भूमि में धर्म प्रचार करने का कार्य सोन और उत्तर नाम के स्थविरों के सुपुर्द किया गया था। गवामपति नामक एक अन्य भिक्षु भी धर्म प्रचार के लिए स्वर्ण भूमि गया था। इसका उल्लेख महाकर्म विभंग और शासन वंश नाम के बौद्ध ग्रंथों में पाया जाता है। तिब्बत की बौद्ध अनुसृति के अनुसार सातवीं सदी में धर्मपाल ने और 11वीं सदी में दीपंकर श्री ज्ञान अतीश ने स्वर्ण भूमि दीप की यात्राएं की थी। दिव्यावदान में भी महानतम स्वर्ण भूमि पृथ्वी हुई प्रदेशम काबिल पृष्ठ 107 का उल्लेख है और वहां पहुंचने की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। पुराणों में भी अनेक स्थलों पर स्वर्ण भूमि का उल्लेख किया गया है। भारत के प्राचीन साहित्य के बौद्ध जैन तथा पौराणिक सभी प्रकार के ग्रंथों में स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप का उल्लेख का होना यह सूचित करता है कि प्राचीन भारतीय दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में भली भांति परिचित थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र को स्वर्ण भूमि व स्वर्ण द्वीप कहने की परंपरा केवल भारतीयों तक ही सीमित नहीं थी। उनके अनुकरण में ग्रीक, रोमन, अरब तथा चीनी लोग भी इसे इन्हीं नामों से कहा करते थे। पामपोनियस मेला ने रोमन सम्राट क्लोडियस 4154 ईस्वी के शासनकाल में लिखे अपने ग्रंथ दी कोरोग्राफिया में चिप्री द्वीप का उल्लेख किया है, जिसका शाब्दिक स्वर्ण द्वीप है। परिपलस ऑफ एरिथियन सी 1वीं सदी ईस्वी में भी चिस्सी का जिक्र आता है और पिलनी 77 ईस्वी ने भी अपने भूगोल में इसका उल्लेख किया है। बाद के अनेक ग्रीक और रोमन लेखकों के ग्रंथों में भी चिस्सी द्वीप का उल्लेख है। टालमी 2वीं सदी ईस्वी ने चिसी के बजाय चिसी कोरा शब्द का प्रयोग किया है, जो स्वर्ण भूमि शब्द का अनुवाद है। अन्यत्र टॉलमी ने चिसी चेरोसोनेसिस का भी उल्लेख किया है, जिसका शब्दार्थ स्वर्ण प्रायद्वीप है। मजुमदार स्वर्ण द्वीप पृष्ठ 38-40। दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए भारतीयों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप नामों से अरब लोग भी भली भांति परिचित थे। अल बरूनी ने लिखा है कि जावाज के द्वीपों को हिंदू लोग स्वर्णद्वीप कहते हैं। एक अन्य स्थान पर अल बरूनी ने लिखा है, जावाज के द्वीपों को स्वर्ण भूमि इस कारण कहा जाता है क्योंकि वहां की मिट्टी को यदि थोड़ा सा भी धोया जाए तो उसे सोना प्राप्त हो जाता है। बृहत संहिता में उत्तर पूर्व देशों की जो सूची दी गई है, अल बरूनी के अनुसार उसमें स्वर्ण भूमि भी थी। हरकी, याकूत, शिराजी और बुजुर्ग बिन सहरियार नामक अरब लेखकों ने भी सोने की भूमि का उल्लेख किया है। इन लेखकों का समय 12वीं से 14वीं सदी तक था। नुवायरी 14वीं सदी ने सुमात्रा के पश्चिमी भारत में स्थित फंसूर का सोने की भूमि के रूप में वर्णन किया है। वजुमदार स्वर्णद्वीप पृष्ठ 40-41। भारत के अनुकरण में चीनी लोग भी इस क्षेत्र के प्रदेशों को स्वर्णद्वीप भी कहा करते थे। सिंह ने अपने यात्रा विवरण में 2 बार किंचू स्वर्णद्वीप का उल्लेख किया है, जिसे उसने चेली फोचे श्री विजय से मिलाया है। सिंह ने भी श्री विजय को ही स्वर्णद्वीप कहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया के किस प्रदेश को स्वर्ण भूमि कहा जाता था और किस प्रायद्वीप या द्वीप समूह के लिए स्वर्ण भूमि का शब्द प्रयुक्त होता था, यह निर्धारित कर सकना कठिन है। विद्वानों में इस प्रश्न पर मतभेद भी है, पर भारत के पूर्व में जिन देशों और द्वीपों को टालमी ने तांस गंगेतिका गंगा पार का भारत कहा था, स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप भी उन्हीं को कहा जाता था। इस बात के प्रमाण विद्यमान है कि बर्मा, मलय, प्रायद्वीप और सुमात्रा के लिए स्वर्ण भूमि शब्द का प्रयोग हुआ है और सुमात्रा तथा उसके समीप के द्वीपों को स्वर्ण द्वीप भी कहा गया है, पर इन संज्ञाओं का प्रयोग केवल इन्हीं तक सीमित नहीं था। भारत के दक्षिण पूर्व के प्रायः सभी प्रदेश स्वर्ण भूमि के अंतर्गत थे।